समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी नमस्कार।
नमस्कार करिश्मा एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। मी एंड करिश्मा, वी आर रेडी to start our program. This is Parikrama on 100.1 FM, and for you, first we will begin with the headlines and then our discussion segment Dateline India. Also, we have reports, capsules which we have lined up for you, and there are tributes at the end of the program, so please make sure that you stay tuned with us till the very end. So let's begin with the headlines first, Karishma. Prime Minister Narendra Modi asserts Lok Sabha seats will not be reduced for southern states that have effectively controlled population growth. Says overall increase in seats will benefit all states.
वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में कूच बिहार से चुनावी अभियान शुरू करेंगे.
Government clarifies that India is importing crude oil from 40 countries, including Iran. Calls reports about payment hurdles for Iranian crude as factually incorrect.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 के लापता दूसरे पायलट को ईरान से सुरक्षित निकाला गया.
And Easter being celebrated across the globe today. President, Vice President and Prime Minister extend greetings to the people. So listeners, this is our segment, Dateline India discussion segment, and we will be taking a look at the developments taking place at national or global level today. Well, our point of discussion is Sadhana Saptah 2026, so let's start our discussion with a scenario from a small town, and I'll paint the picture for you, our listeners, where a young officer is posted. So every day, people walk into the office with problems, a pension delay, a land record issue, or a missing document. But what truly solves these problems? Is it the rule book alone or the officer's ability to listen, understand and act with clarity? What is it?
खैर शगुन, मेरा सच में मानना है कि यह अधिकारी की समस्या सुलझाने की काबिलियत ही है जो हर रोज नीतियों को जीवंत बनाती है, क्योंकि हर असरदार व्यवस्था के मूल में ऐसे लोग होते हैं जो कुशल, जागरूक और सेवा के लिए तत्पर होते हैं.
Exactly, करिश्मा, and that's what this powerful initiative begins. Well, in this first week of April 2026, which is known as Sadhana Saptah, 7 days dedicated to strengthening the very heartbeat of Indian governance.
बिल्कुल, और श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि असल में कौन सी चीज किसी सरकार को अपने लोगों की आशाओं और जरूरतों के प्रति जवाबदेह बनाती है? क्या यह सिर्फ नई नई नीतियां हैं या फिर उन अधिकारियों के रोजमर्रा के कौशल जो सोच और समर्पण है, जो उन नीतियों को असल जिंदगी के समाधानों में बदलते हैं? और इसका खूबसूरत जवाब मिशन कर्मयोगी के जरिए ठीक हमारे सामने उभर कर आ रहा है, और यह सप्ताह इसी का एक भव्य उत्सव है.
सो राइट करिश्मा, एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कर्मयोगी भारत, साधना सप्ताह ब्रिंग्स टुगेदर मोर देन 100 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ऑल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड ओवर 250 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑन वन वाइब्रेंट नेशनल प्लेटफॉर्म.
बिल्कुल, और इसके साथ ही 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक हम भारत के अब तक के सबसे बड़े सहयोगात्मक क्षमता निर्माण अभियान के गवाह बन रहे हैं, और इसके साथ ही एक दिल को छू लेने वाला प्रेरणादायक टैग लाइन जुड़ा है जो किसी निजी वादे जैसा महसूस होता है कि हम कर्मयोगी बने.
Great. And Mission Karmyogi, let's elaborate that as well. Mission Karmyogi has already onboarded over 1.5 crore learners on the iGOT platform. So like, can you just imagine 1.5 crore government servants from the bustling secretariat in Delhi to the block office in a remote district, where logging in and learning and then growing. They've completed more than 8 crore courses with access to over 4,600 courses offered in multiple languages. And this isn't distant theory, Karishma. It's practical. Role-based learning that's already changing how our civil services work.
बिल्कुल. और क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ सरकारी सेवाएं कितनी तेजी से काम करती हैं, जबकि कुछ में आपको अभी भी इंतजार करना पड़ता है. यह मिशन चुपचाप उस अनुभव को बदल रहा है. यह हमें कड़े नियमों पर आधारित सिस्टम से हटाकर एक गतिशील काबिलियत पर आधारित नजरिए की ओर ले जाता है. ठीक वैसा ही नजरिया जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के लिए तैयार पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सिविल सेवा के लिए पेश किया था. 2021 में स्थापित क्षमता निर्माण आयोग और 2022 में शुरू किया गया कर्मयोगी भारत, ये दो मजबूत स्तंभ हैं जो हर दिन इस बदलाव को हकीकत में बदल रहे हैं.
एंड वेल, दिस वीक इट्स बिल्ट अराउंड थ्री पावरफुल सूत्रस दैट ब्लेंड द बेस्ट ऑफ आवर हेरिटेज विद द प्रॉमिस ऑफ टुमारो. एंड दीज आर टेक्नोलॉजी, tradition and tangible outcomes. So let's explore them one by one, because each one touches our lives. First, we will talk about technology. And this was in focus on 3rd and 4th April. So sessions dived into artificial intelligence in governance, digital public infrastructure, prompt engineering and automation tools that make decisions sharper and services smoother. And this isn't about machines replacing people. Well, it's about empowering our officers to serve citizens even better.
बिल्कुल. और इसके बाद 5 और 6 अप्रैल को परंपरा का आयोजन होगा, यानी आज और कल, जो हमारी जड़ों की एक दिल से की गई वापसी है. क्योंकि इसे ऐसे समझना होगा शगुन, कि क्या आपको गांव में जो समझदार बुजुर्ग याद हैं कि वो अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूरी निष्पक्षता और सामुदायिक भावना के साथ झगड़ों को सुलझाते थे. हम उन्हीं प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों, हमारे दर्शन से निकले नैतिक ढांचों और समुदाय आधारित शासन के उन आजमाए हुए मॉडलों को फिर से खोज रहे हैं. अधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि ये प्राचीन जो अंतर्दृष्टियां आज के प्रशासन को किस तरह ज्यादा संवेदनशील, सांस्कृतिक रूप से अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ और हर नागरिक की जरूरतों के प्रति ज्यादा सजग बना सकती है.
एग्जैक्टली करिश्मा. एंड नाउ द थर्ड सूत्र, टैंजिबल आउटकम्स ऑन 7th एंड 8th अप्रैल. बिकॉज यू नो, टॉक अबाउट विदाउट रिजल्ट्स मीन्स नथिंग. एंड हियर द स्पॉटलाइट टर्न्स टू मेजरिंग रियल पब्लिक वैल्यू, सिटीजन इम्पैक्ट ट्रैकिंग, clear priority sectoral goals, and also dashboard-based monitoring that ensures policies actually improve lives on the ground. So a farmer in Punjab sees his crop insurance claim settled in days, not months. A young mother in a small town gets her child's vaccination appointment with a single click. So these are the outcomes we can touch, feel and celebrate.
बिल्कुल. और इसके साथ ही इस हफ्ते के आखिर तक हर मंत्रालय और विभाग आने वाले वित्त वर्ष के लिए दो प्राथमिकता वाली टेक्नोलॉजी पहलों और तीन मापने लायक नतीजों के लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होगा. इन्हें एक मजबूत क्रॉस सेक्टोरल रोड मैप में संकलित किया जाएगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन, सुरक्षा, शासन, अर्थव्यवस्था, कल्याण और अन्य क्षेत्र शामिल होंगे. और ये सभी विकसित भारत 2047 के अनुरूप होंगे.
Well, this adds to the excitement, and the excitement doesn't stop there. Several game-changing initiatives are launching during Sadhana Saptah itself. Let's number them and let's tell our listeners about them one by one. First one, Karishma, Karma Yogi Kshamta Connect. This means that giving frontline workers structured learning modules so they deliver citizen-centric services under this Karma Yogi Kshamta Connect with greater confidence and digital ease.
बिल्कुल. इसके साथ ही राष्ट्रीय जन सेवा कार्यक्रम, जिसमें युवा स्वयं सेवकों और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे जमीनी स्तर पे सेवा भाव के सच्चे सूत्रधार बन सकें.
थर्ड वन, Unnati Portal, which is creating a unified digital backbone for all training institutions with real-time monitoring and collaboration.
और इसके साथ ही iGOT Learning Assessment Framework एक विश्वास आधारित प्रणाली है जो ये सुनिश्चित करती है कि सीखना वास्तव में कार्यस्थल पे बेहतर प्रदर्शन में तब्दील हो.
And the other one, Karmyogi Gaan. As the name suggests, this is a song which is weaving dedication and continuous learning into the very culture of our services.
Aur AI Sanchalit Amrit Gyan Kosh Suit ko Shasan se judi case studies ko smart aur upkaranon mein badal raha hai.
Now, seventh one. Capacity building for Viksit Panchayat, that is strengthening grassroots democracy with e-learning and AI-supported decision-making.
और अंत में एक विशेष कार्यक्रम जो वैज्ञानिकों को शासन नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल से सुसज्जित करता है जब वे बड़ी भूमिकाओं में कदम रखते हैं.
So we have talked about this and we have elaborated so many points and this is a national movement. The first time capacity building efforts across every level of the government are aligned under one shared framework. Senior leaders, training experts and policy makers are gathering at the National Conclave in New Delhi to exchange ideas and then share best practices and spark collaborative problem solving. That will ripple across the country.
बिल्कुल और इसके साथ ही आई गॉट पे चुने हुए कोर्स ग्रुप डिस्कशन वेबिनार और प्रैक्टिकल वर्कशॉप के जरिए साधना सप्ताह लीडरशिप कम्युनिकेशन डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल गवर्नेंस से हुनर को बढ़ावा दे रहे हैं. यह एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां सीखना कभी नहीं रुकता क्योंकि एक मजबूत भारत को एक ऐसे संस्थान की जरूरत है जो लगातार बेहतर होते रहे.
दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव वीक. So, well, we should all take a moment to feel the pride. We are not just watching governance improve. We are part of a living, breathing movement that blends our timeless values with cutting-edge tools to create citizen-centric Bharat ready for 2047 and beyond. And every officer becoming a Karmyogi, every department committing to measurable results, every citizen experiencing better service, that's the India we are building together.
बिल्कुल. और श्रोताओं आइए इस सफर का उत्साह बढ़ाएं क्योंकि एक सक्षम और संवेदनशील सिविल सेवा हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है. हम बने कर्मयोगी और मिलकर हम इसे साकार कर रहे हैं. और श्रोताओं अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
सो करिश्मा, फर्स्ट विल हेड टू भुज.
जी,
the 63rd National Maritime Day is being celebrated across the country, highlighting India's rich maritime legacy and recognizing the contribution of seafarers to the nation's growth. And let's find out more details from our correspondent in this report.
National Maritime Day is celebrated annually on April 5th, highlighting the significance of maritime operations and expressing gratitude to those who spend months at sea. This day commemorates the maiden voyage of India's first merchant ship, SS Loyalty, which set sail from Mumbai to London on April 5, 1919, marking India's entry into international shipping. Talking exclusively to Akashvani News, Joint Director General of Shipping and Principal Officer of Mercantile Marine Department, Kandla, Captain Santosh Kumar Darokar explained that Merchant Navy Week is an integral part of National Maritime Day celebrations.
The occasion is to disseminate information about merchant shipping through different media, publications, workshops, exhibitions, competitions and other activities for benefit of seafarers and shipping community at large.
The theme for this year's celebration is Maritime India, Empowering Progress. Dindayal Port Kandla, located on the Gulf of Kutch in Gujarat, has set a new record by handling over 160 million metric tons of cargo in the financial year 2025-26. On the occasion of National Maritime Day and Merchant Navy Week, various programs are being organized at Kandla Port. Captain Santosh Kumar said that the Mercantile Marine Department under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways in association with Dindayal Port Authority organized activities including marine flag hoisting, a maritime run, cycling and yoga sessions along with awareness seminars and competitions in schools and colleges. Earlier, Gujarat Governor Acharya Devrat and Chief Minister Bhupendra Patel were presented with miniature National Maritime Day flags, symbolizing the maritime industry's contribution to the nation. India's maritime sector plays a vital role in the country's trade and commerce, handling around 95% of the country's trade by volume and 70% by value. From the pioneering voyage of SS Loyalty in 1919 to becoming a global shipping powerhouse, India has achieved a key position on global shipping routes as the 16th largest maritime nation in the world, with a coastline of over 7,500 kilometers and 12 major ports. For Parikrama, Ashraf Nathwani, AIR News, Bhuj.
और अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हिमकारा योजना जेल व्यवस्था में एक नई सोच स्थापित करने में अहम भूमिका निभा रही है। योजना का उद्देश्य जेलों को केवल सजा के स्थान के बजाय सुधार और व्यवसायिक प्रशिक्षण के केंद्रों में बदलना है। एक रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश में हिमकारा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक अभिनव जेल सुधार पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य कैदियों को कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक पुनर्वास के अवसर प्रदान करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। कैदियों को उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न व्यवसायों, बेकरी और मिठाई बनाना, बढ़ईगिरी, वेल्डिंग, दुग्ध उत्पादन और फूलों की नर्सरी, कार धुलाई, सैलून सेवाएं और फास्ट फूड इकाइयों का प्रशिक्षण दिया जाता है। कैदियों द्वारा तैयार उत्पादों को पूरे राज्य में समर्पित आउटलेट्स के माध्यम से हिमकारा ब्रांड के तहत बेचा जाता है। इससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा कैदियों के परिवारों को भेजा जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल और आत्मसम्मान मिलता है। कांगड़ा जिला के धर्मशाला स्थित लाला लाजपत राय जिला जेल और खुला सुधार गृह इस योजना के तहत सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इस पहल से कैदियों में कार्य अनुशासन के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और उन्हें अपनी मेहनत से कमाने का अवसर मिल रहा है। निश्चित तौर पर इस तरह की योजनाएं कैदियों को सम्मानजनक जीवन यापन के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में कारगर साबित होंगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से प्रभा शर्मा।
So now this report, it is really interesting because this involves us talking about mango, the widely loved fruit for its juice.
और अब तो season भी आ गया.
Exactly, mango season approaches us and the aromatic qualities, the summer, the prosperity, the joy, the versatile fruit in both raw and ripe forms. So, the Indian Institute of Horticultural Research, IIHR, near Bengaluru, has developed a fruit trap technology that is benefiting the mango farmers across the country. So as this season, the mango season, the king of fruit, this season approaches us, we have the success story from our Bengaluru correspondent. Listen in.
The king of fruits and the most important horticultural crop, mango, occupies the largest area under fruit cultivation across the country, contributing significantly to farmers' livelihood and export earnings. However, the mango growing farmers encountered challenges due to the disease caused by fruit flies and pests. Its infestation severely affects the fruit quality and restricts international trade. The Indian Institute of Horticulture Research, IIHR, in Bengaluru has addressed this challenge by developing a fly trap technology. This eco-friendly and economically viable integrated pest management strategy using methyl eugenol based parapheromone trap is helping to attract and eliminate the male fruit flies through the male annihilation technique. This helps reduce the fruit fly infestation by more than 80%, thereby ensuring safer and residue-free produce that can fetch good price in India and abroad. Since 2009, this technology, promoted through government support through subsidies, is helping mango farmers to get disease-free yields. The horticulture departments in Andhra Pradesh, Karnataka, Orisha, Sikkim and other states have adopted this technology in mango orchards under the national programs like Rashtriya Krishi Vikas Yojana and Integrated Development of Horticulture Mission. Over 6,000 mango farmers have adopted this technology in many states. These farmers are successful today in producing the environmentally sustainable mangoes that are pesticide-free, thereby enhancing their income. Sudhindra Parikrama, Bengaluru.
और बढ़ते आगे बात जम्मू की कर लेते हैं। औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने जम्मू संभाग में 100 स्कूल हर्बल गार्डन स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर प्रति गार्डन 53 लाख रूपये की लागत आएगी। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
The project has been approved after recommendations from Directorate of Ayush, J&K, with the objective of integrating the rich heritage of medicinal plant into the school education system in a meaningful and practical manner. The herbal gardens will serve as vibrant learning spaces where students will gain first-hand knowledge about the identification, cultivation and uses of important medicinal plants while also developing a deeper appreciation for natural and traditional system of healthcare. The 100 schools have been identified by Directorate of School Education Jammu, Director Ayush J&K and CEO J&K Medicinal Plant Board, Dr. Ajay Kumar Tikku termed the approval as a significant milestone and stated that the initiative reflects a forward-looking approach towards linking education with traditional knowledge systems. It is expected to create a lasting impact by instilling in young minds an understanding of the relevance of Ayush systems and the importance of preserving indigenous knowledge for further generations. Dr. Tikku conveyed his sincere gratitude to the Minister for Health and Medical Education, Sakina Ittu, for her constant support and leadership in securing approval of the project. The Jammu and Kashmir Directorate of Ayush remains committed to expanding such initiatives that strengthen awareness, conservation and sustainable use of medicinal plants across the Union Territory. This is N. Gulshan Raina for Parikrama from Akashwani Jammu.
और शगुन अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां के हलचल।
यस करिश्मा, इन आईपीएल क्रिकेट सनराइजर्स हैदराबाद वर 122 फॉर 4 इन 15.4 ओवर्स अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स एट राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम इन हैदराबाद व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन। सो अर्लियर लखनऊ सुपर जायंट्स वन द टॉस एंड ऑप्टेड टू बोल। सो इन अनदर मैच Royal Challengers Bengaluru will face Chennai Super Kings in Bengaluru this evening. The match will begin at 7:30 p.m.
और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनके आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we remember freedom fighter and crusader of social justice, Babu Jagjivan Ram, who was born on the 5th of April 1908 in Bhojpur, Bihar. He founded the Akhil Bharatiya Ravidas Mahasabha in Calcutta and the All India Depressed Classes League for involving the depressed classes in the freedom struggle.
Jagjivan Ram played a very active role in the freedom struggle. He became a legislator at the young age of 28 in the year 1936 as a nominated member of the Bihar Legislative Council. When the Congress government was formed in 1937, Jagjivan Ram was appointed as the parliamentary secretary in the Ministry of Education and Development. However, in 1938, he resigned along with the entire cabinet.
Inspired by Gandhiji, Jagjivan Ram courted arrest on the 10th of December 1940. After his release, he entrenched himself deeply into the civil disobedience movement. Jagjivan Ram was arrested again on the 19th of August 1942 for his active participation in the Quit India movement. After his release, he became the youngest minister in the interim government in 1946. As a member of the Constituent Assembly of India, he ensured that social justice was enshrined in the Constitution.
Jagjivan Ram went on to serve as a minister with various portfolios for the next 30 years. He was the Defence Minister of India during the Indo-Pak War of 1971, which resulted in the creation of Bangladesh. His contribution to the Green Revolution in India and modernizing Indian agriculture during his two tenures as Union Agriculture Minister are still remembered. We salute the great nationalist.
We also remember Mahatma Gandhi's second son, Manilal Gandhi, who died on the 5th of April 1956.
Manilal was born on the 28th of October 1892 in Rajkot, British India. Between 1906 and 1914, he lived at the Phoenix Settlement and Tolstoy Farm established by Gandhiji. After a brief visit to India, Manilal returned to South Africa in 1917 to assist in printing the newspaper Indian Opinion. Manilal took over in 1920 as the editor of the paper.
Manilal also endeavored hard to stay as true to the Gandhian ethos as possible. Manilal went to prison several times for protesting against what he perceived as unjust laws. Former South African President Nelson Mandela had once recalled that Manilal's gentle demeanor seemed the personification of non-violence. Manilal was one of the initial 78 marchers to accompany Gandhiji on the 1930 Salt March. He also served a 10-month prison term for his involvement in the march to Dharsana Salt Works that followed soon after Dandi.
Manilal remained editor of Indian Opinion until 1956, the year of his death. we salute the great Gandhian.
We remember freedom fighter Nawab Singh Chauhan, who died on the 5th of April 1981. He joined the freedom movement in 1930 on the call of Gandhiji and started taking part in anti-British activities.
Nawab Singh was born on the 16th of December 1909 in Aligarh, Uttar Pradesh. He was expelled from the college for raising anti-British slogans. During the Satyagraha in 1940, Nawab Singh Chauhan led villagers in Aligarh. He was arrested and spent almost 3 years in jail. After independence, Nawab Singh joined politics and served as a member of Lok Sabha and Rajya Sabha. He worked towards empowerment of depressed classes, rural development and agricultural research.
Nawab Singh was also known for his Hindustani poetry and used the pen name Kanj as a poet and worked towards development of bridge literature and art. We salute the great Indian.
और इसके साथ ही आज संगीत जगत की मशहूर रविंद्र संगीत गायिका कनिका बंदोपाध्याय की पुण्यतिथि है, जिनकी मधुर आवाज आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। कनिका बंदोपाध्याय रविंद्र संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी, जिन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर के गीतों को अपनी भावपूर्ण आवाज से एक नई ऊंचाई दी। उनकी गायकी में भावनाओं की गहराई और सादगी साफ झलकती थी। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
Today we're also remembering Pandita Ramabai on her death anniversary, remembered as a trailblazer of women's empowerment, a fearless champion of women's rights and education. Her courage and compassion continue to inspire generations to stand strong, break barriers and uplift the marginalized.
और सबसे खास बात यह भी है उनकी उपलब्धियों में कि पंडिता रामाबाई ने उस समय महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए काम किया जब समाज में महिलाओं की स्थिति काफी सीमित थी। उन्होंने न केवल महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास किया। और इसके साथ ही उन्हें संस्कृत भाषा का भी गहरा ज्ञान था, जिसके कारण ही उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई।
टुडे लिसनर्स, वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग दिव्या भारती।
बिल्कुल, और आज फिल्म जगत की मशहूर अदाकारा दिव्या भारती की पुण्यतिथि है, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका सपना हर कलाकार देखता है। दिव्या भारती ने बेहद कम समय में अपनी खूबसूरती और चुलबुले अंदाज से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।
वेल राइट करिश्मा, अ शाइनिंग स्टार वाज लॉस्ट फार टू सून, लीविंग बिहाइंड मेमोरीज दैट स्टिल लिव इन एवरी हार्ट। हर स्माइल, इनोसेंस एंड मैजिक कंटिन्यू टू एको थ्रू टाइम।
और इसके साथ ही कहा जाता है कि उन्होंने महज 19 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन विश्वास्तमा फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसका गाना सात समंदर पार आज भी बेहद लोकप्रिय है। इसके बाद दीवाना, शोला और शबनम, दिल का कसूर जैसी कई फिल्में उन्होंने दी थी।
So listeners, we want you to be very happy and we will now wish happy birthday to Pharrell Williams. First emerging in the early 90s as a producer out of Virginia Beach, Pharrell quickly established himself as a defining force behind a new era of hip-hop and beyond. So this is a song, Happy.
you
और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के संग को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए करिश्मा और शगुन चोपड़ा को।
वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ सुपर्ब डे अहेड।
नमस्कार।